अक्षर संघारण की बात भी तब शुरू होते हैं बाप, जब गीता की भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ उसका ये बात ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ शुरू होता है कि असुर संहारिणी की बात कब शुरू होता है?
पाठ तब शुरू होता है जब काम सी चीज लगती
है
ब्रह्मा की भी तामसी स्टेज और जगदम्मा की भी तामसी
स्टेज। कल्याण है ना बाप?
कल्याण तो होगा ही।
तामस में कल्याण कैसा होता?
ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश, ये तामस के द्वारा विनाश होता है या सात्विक स्टेज के द्वारा विनाश होता है? अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। लोहे को लोहे से काटा जाता है और विष को विष से मारा जाता है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं विषैली बन जाती है, रावण के चंबे में आ जाती है। उनका बाप भी तो इस धरती पर मौजूद होता है। वो बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। असुरों का भी बाप है और देव आत्माओं का भी बाप है, ऐसे ही माता भी। अति सात्विक स्टेज का पाठ बजाती है तो महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है, नारायण के साथ महालक्ष्मी या लक्ष्मी।
महालक्ष्मी माना तो विष्णु संपूर्ण विष्णु,
नारायण के साथ लक्ष्मी और महानारायण के साथ महालक्ष्मी।
महानारायण माना दो होते हैं।
महानारायण का मतलब है राम और कृष्ण की दोनों आत्माएं स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती
है।
और महालक्ष्मी का मतलब है जगदम्बा के रूप में पाठ बजाने वाली और राधा बच्ची के रूप में पाठ बजाने वाली, दोनों ही शक्तियां स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती है। एक है सामना करने वाली मूर्ति और एक है सहन करने वाली मूर्ति, जिसे ब्रह्मा सु विष्णु कहा जाता है। ये बात पक्की है, विष से विष मारा जाता है, कड़क लोहे से लोहा काटा जाता है।
दो पाचन के बीच में साबित बच्चा ना कोई ऐसा कहा जाता है, इसको जरा थोड़ा क्लियर कीजिए।
दो पाठ कोई दूसरे पाठ नहीं है, वेदों में इसका गायन है द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी माता है और द्यावा माने द्युलोक माने आकाश लोक, द्यु माने चमकने वाला लोक माने ब्रह्मलोक। वो पिता है और ये माता है। पिता ऊपर या माता ऊपर? पिता ऊपर है, माता नीचे। नीचे का पार्ट, ये दो पार्ट जब घूमते हैं तेजी से तो साबुत बचे नकुर, सब आत्माएं निश्चय बुद्धि से खंडित हो जाती है। और ये माला बनने के लिए जरूरी है, वो भी नंबर वार होते हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, स्लाइट अंतर होता है फिनिशिंग में, अगर वो अंतर न पड़े तो माला के आठ नंबर नहीं बनेंगे, उनमें भी कोई पहला नंबर है। इसे महादेव कहा जाता है, बाकी नंबर वार
ऐसा युग के 21 जन्म में से पहला जन्म संगम युग का पता चलता है हमको, और बाकी बचे 20 जन्म जो है उनका शास्त्रों में कोई गायन वर्णन नहीं है, तो जो 84 जन्म हमको पता चलेंगे उसमें वो 20 जन्म भी पता चलेंगे क्या?
नहीं पता चलेंगे, अभी पता नहीं चल रहे होंगे, अगर नहीं पता चलेंगे तो ये कैसे कहा जा सकता है कि त्रेता युग में राम वाली आत्मा स्त्री चोला धारण करेगी? और जो वर्तमान में अव्वल नंबर सीता है वो त्रेता युग में राम के रूप में पुरुष चोला धारण करेगी। सेकेंड थर्ड फोर्थ जो नारायण है वो अपने स्वरूप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? जब पहचानेंगे तो उनको अपने उस जन्म का परिचय प्राप्त हुआ या नहीं हुआ?
नारायण का वो पहला जन्म ही होगा,
भले पहला जन्म होगा
उसके बाद वाले जन्म,
जब उनको अपने पहले जन्म का ज्ञान जान हो सकता है तो जो उनसे ऊंची स्टेज वाले नारायण है उनको ज्ञान नहीं होगा क्या?
पहले जन्म का ज्ञान होगा, बाद के 20 जन्मों का ज्ञान किस तरह?
वो भी होगा, लेकिन त्रेता युग में बात बदल जाती है, जो सतयुग की बातें हैं रीति रसम रवा रिवाज है वो त्रेता में नहीं रहते,
पूरा नहीं रहता बाबा,
और उसकी भी शूटिंग यहाँ होती है। सतयुग में सिर्फ महाराजाओं का राज्य होता है और त्रेता में महाराजाएं नहीं होते, राजाओं का राज्य होता है। द्वापर युग में राजा और महाराजा दोनों का राज्य होता है। अब कलयुग में महाराजा कोई नहीं होता, सम्राट राजाओं का राज्य चलता है।
बाबा वैजयंती माला में,
और थोड़ा जोर से बोलिए,
वैजयंती माला में,
हाँ जी
वैजयंती माला में 108 मंत्र है ना बाबा?
हाँ जी,
उनमें क्या रुद्रमाला मंत्र और सवन और माला मन के 54 जुगल होता है बाबा?
नहीं नहीं,
या रुद्रमाला से 108 और नीति माला से 108
108 रुद्रमाला के 108 और विजय माला के भी 108 दोनों को मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है
कम्बाइन।
216 आत्माएं,
हाँ जी, एक होते हैं आत्मिक रूप में पाठ बजाने वाले और एक है शरीर का पाठ बजाने वाले। बुद्धि थोड़ी मंद है इसलिए पंच तत्वों का शरीर के रूप में मात्र वात्सल्य वाली आत्माएं है वो
प्राणी है।
108 विजय माला प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले
108 रुद्रमाला से और 108 विजय माला।
एक है प्लानिंग पार्टी माने बुद्धि चलाने वाली बुद्धिमान विशेष आत्मा
रुद्रमाला बाप के बच्चे
बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे और दूसरी है प्रैक्टिकल पार्टी प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा होता है शरीर के द्वारा होता है।
बाबा तो वैदिक की माला में 216
रुद्रमाला की जब सब आत्माएं विजय माला में ऐड हो जाएगी तब कहा जाएगा प्रवृत्ति मार्ग की माला।
ज्योति किंदु शिव किन किन में प्रवेश कर सकते हैं ज्योति किंदु शिव किन किन में प्रवेश कर सकते हैं बाबा गीता माता में प्रवेश किया उसके बाद रामवरी व्यक्तित्व में प्रवेश किया।
ज्योति बिंदु शिव मुकर्रर रूप से एक में ही प्रवेश करते हैं और बाकी जो भी ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं उनमें भी प्रवेश करते हैं वो है टेम्परेरी रथ वो भी टेम्परेरी रथ है
एक में प्रवेश
हाँ एक में प्रवेश करके बुद्धि का मन बुद्धि का मनसा का और वाचा का पाठ बजाते हैं लेकिन कोई में प्रवेश करके सिर्फ कर्मणा का पाठ बजाते मनसा का और वाचा का पाठ नहीं प्रैक्टिकल पाठ बजाते। वैष्णवी देवी जो प्रैक्टिकल में सारा कार्य संपन्न करती है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्धिमानों की बुद्धि सेवा मन बुद्धि के रूप में कार्य करते हैं उनकी कर्म इंद्रियों में प्रैक्टिकल इंद्रियों में वो सेवा कल्याणकारी समाया जाता है जैसे कहते हैं ना मेरी रग रग में समाया हुआ है।
तो क्या शिव ज्योति 108 मणकों में भी प्रवेश करना
नहीं बाबा
रुद्रमाला के मणकों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं शिव सभी में प्रवेश नहीं करते। अगर शिव सभी में प्रवेश करें तो सब श्रेष्ठ बन जाएंगे कोई भी धर्मी नहीं बनेगा। कहा जाता है
सर्विस के लिए
कहा जाता है कि मैं प्रवेश करता हूँ प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता हूँ वाचा की पावर देता हूँ लेकिन कोई जजमेंट नहीं कर सकता कि मेरे अंदर सेवक की सोच का प्रवेश है फाइनल नहीं हो सकता।
बाबा मुरली ने कहा
ये इसलिए बाबा कहते हैं जब कोई की सेवा करो तो बाप की याद में रह करके सेवा करेंगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश जब करती है संपूर्ण सूक्ष्म शक्ति से सूक्ष्म शरीर की पावर से तो उनको याद विशेष रहती है शिव की इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं वो मुरली के अनुसार ही बोलते हैं। एक भी अव्यक्तवाणी का ऐसा वाक्य नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला नहीं तो दो आत्माएं जब बोलती हैं तो उनकी बातों में कोई न कोई फर्क जरूर पड़ जाता है लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी वाणी बोली गई गुलजार के तन से उसका एक वाक्य भी मुरली के महावाक्यों को काटने वाला नहीं है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा में शिव का प्रवेश होता था, लेकिन गुलजार दादी में शिव का प्रवेश न होते हुए भी ब्रह्मा की सोल गहरी याद में रहकर के वाणी चलाती, इसलिए वो वाणी मुरली के समानांतर चलती है।
ब्रह्मा
के 108 मणके उनमें पार है तो पक्के सूर्यवंशी है, बाकी सब नंबरवार है। उनमें भी 4 नष्ट देव और 8 अष्ट देव है। उन अष्ट देवों में भी जो 7 है वो आखिरी जन्म में जाकर के दूसरे दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। एक ही ऐसा रहता है जो अंत तक इस सृष्टि में असुरों का मुकाबला करता है, जिसके लिए बोला है हिम्मते बच्चे तो मद दे बाप, माने जो बच्चा कलयुग के अंतिम जन्म तक भी आसुरी शक्तियों से मुकाबला करके रहता है, हिम्मत करता है, आखिरी लहमे में जब थक जाता है तो भगवान बाप को पुकारता है। 63 जन्म पुकार होती रही भक्तों के द्वारा, क्यों नहीं आया?
बाप था,
है?
साकार बाप था,
साकार बाप था,
संभालने वाला, पृथ्वी को संभालने वाला बाप था।
हाँ, जो भी मनुष्य सृष्टि का पिता था, मनुष्य सृष्टि का पति है, रक्षक है, वो हिम्मत में रहा। आखिरी जन्म में जब उसने देखा कि अब तो गले से ऊपर पानी जा रहा है, ये कीचड़ की दुनिया का, तो बाप का सहयोग लिया, बाप को बुलाया और बाप हाजिर हुआ। गांधी जी ने बुलाया, हाजिर हुआ? नहीं हाजिर हुआ।
लेकिन मुरली और महेश क्यों कह रहे हो आप, तुम
पावन
है, पतित पावन, पावन आओ, तुम 63 जन्मों से बुला रहे इसलिए मैं आया।
पावन आओ वो साकार के लिए गायन है या बिंदी के लिए गायन है? पतितों को पावन साकार बने बिगर बनाया तो जा सकता है क्या?
बाबा शिवालय में दो नंदी को बाबा एक टेम्पररी रखता और ये परमानेंट रखता यार और गीता माता का यादगार शिवालय में
बाबा शिवालय में दो नंदी को गाना एक परमानेंट रखता है यादगार और एक टेम्पररी रखता है
यादगार थोड़ी बनेगा टेम्पररी रख तो ब्रह्मा कितने ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है
प्रवेश करता हूँ
ब्रह्मा बहुतों के नाम है या एक का नाम है
ब्रह्मा बहुतों का
नाम बहुतों के नाम है लेकिन प्रजापिता
एक का नाम
एक का नाम है
तो शिवालय में दो नंदी हो गए
नंदी दो होते हैं बैल एक दिखाया जाता है या दो दिखाए जाते हैं ये तो बता जाते ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बोल दिया है तो जो भगत है उनके उन्होंने मान लिया है लेकिन जो भी शिव के मंदिर होते हैं उनमें एक बैल दिखाया जाता है या दो बैल दिखाए जाते हैं एक ही दिखाया जाता है
बात तो नंदी गण
होता है नंदी गण कहा जाता है इसलिए कि उसमें प्रवेश है राम की आत्मा भी प्रवेश है और कृष्ण की आत्मा भी उस तन में प्रवेश है इसलिए नंदीगण कहा जाता है जो अपनी गवर्नमेंट बनी थी शुरुआत में कांग्रेस गवर्नमेंट तो उनका भी निशान दो बैलों की जोड़ी था
और बाबा ब्राह्मण सतयुग में सब प्राणियों होंगे या ना होगा
ब्राह्मण में
सब प्राणी
पटराणी
सब प्राणी होगा या ना होगा
सतयुग में
ब्राह्मण में तो चार सीन है कौन से सीन की बात कर रहे
सतयुग में सारे प्राणी होंगे नहीं
सारे प्राणी क्यों होंगे दुखदायी प्राणी वहां क्यों होंगे
तो द्वापर युग से वो प्राणी कहाँ से जन्म लेते उनको शरीर कैसे मिलेगा
सतयुग में दो हाथ पांव का चार हाथ पांव का मनुष्य होता है या नहीं होता है
चार हाथ पांव
नाक आंख कान वाला मनुष्य होता है या नहीं होता है
होता है
और द्वापर युग में वहाँ भी होता है लेकिन अंतर क्या होता है
संस्कार
है
संस्कार संस्कार
वहाँ संस्कार स्वभाव में अंतर हो जाता है तो ऐसे ही ये नहीं कि सतयुग त्रेता में प्राणी नहीं होते होते तो हैं, लेकिन द्वापर युग से जब से द्वैत फैलता है तो उनमें संक्रमण हो जाता है जब संक्रमण होता है तो वो आसुरी स्वभाव संस्कार की बन जाती है वो चौपाए जानवर वो भी हिंसक बन जाते हैं जैसे मनुष्य सतयुग त्रेता में भी होते हैं मनुष्य द्वापर कलयुग में भी होते हैं लेकिन द्वापर में मनुष्य हिंसक बन जाता है मनुष्य हिंसक बनता है तो उसके वाइब्रेशन से प्राणी भी हिंसक बन जाते हैं
आत्मा की स्थिति के आधार पर ही प्रकृति रहती है भाई आज जो
माता को कोई माता बोल रही है आवाज नहीं आ रही आप
अभिषेक
आलस
जो लिंग है वो साकार की यादगार है या निराकार की यादगार? साकार की यादगार। तो साकार जो है वो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि होता है या पारस बुद्धि होता है? कोई न कोई बात में पत्थर बुद्धि होता है। तो ज्ञान की किसको दरकार है, पारस बुद्धि को या पत्थर बुद्धि को?
पत्थर बुद्धि को।
बुद्धि को ज्ञान की दरकार है, पत्थर बुद्धि को दरकार है। तो जो घड़े दिखाए गए हैं ज्ञान कलश, कोई बुद्धिरूपी घड़े हैं जिन्होंने ईश्वर के सुनाए हुए ज्ञान को अपने बुद्धिरूपी पेट में धारण करके रखा है, है? वो थोड़ा थोड़ा करके जल टपकाते रहते हैं किसके ऊपर? लिंग के ऊपर, साकार स्वरूप के ऊपर। और वो लगातार वो टपकते 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 जो लिंग है वो ठंडा हो जाता है। जैसे अमरनाथ में दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन गया, कोई बर्फ का लिंग बनता नहीं है, लेकिन ज्ञान धारण करते करते हो जाता है, इंद्रियां शीतल हो जाती है।
याद से नहीं
अपने को याद में है, जिन्होंने ज्ञान जल को धारण किया, सब में एक जैसी धारणा थोड़ी होती, पुरुषों में धारणा अच्छी होती है या माताओं में धारणा अच्छी होती है? माताओं में धारणा अच्छी होती है, वो पवित्रता की धारणा को धारण कर लेती है। ऐसी धारणा राम जो शक्तियां है वो घड़ा है, है? कोई भी नंबर बात
उनसे ज्ञान जल की बूंदे टपकती है,
टपकती रहती है
साकार के ऊपर।
क्यों?
साकार तो ज्ञान,
वो तो भक्तों ने बनाया है वो किसने बनाया है?
लेकिन संगम की यादगार है ना,
पुरुषों के मुख से ज्ञान सुन करके पावन बनेंगे या कन्या माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा होता है?
कन्या माता,
कन्या माताएं जब ज्ञान सुनाए तो असर होता है,
प्यूरिटी जास्ती होती
है,
प्यूरिटी जास्ती होती
है। हाँ जी, वो प्रैक्टिकल परिवर्तन होता है। अभी रुद्रमाला के 1-Z जो भी मणके हैं वो पवित्र बने, ज्ञान स्नान संपन्न हुआ नहीं हुआ, तो समझ में आ गया? ज्ञान स्नान संपन्न कब होगा?
विजय माला के,
हाँ, जो प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण करने वाली शक्तियां हैं, जो निमित्त हैं, रुद्रमाला के मणकों को भी विजय माला में समेटने के निमित्त हैं। विजय माला माने ही विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाली माला।
तो आज तो वाणी चली गई, इसमें तो ब्रह्मा की अभी तक ये निश्चय नहीं पैदा हुआ, बैठा नहीं हुआ। तो गीता की भगवान शिवशंकर भोलानाथ वो तो शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने से ही कितना सूक्ष्म उत्तरवासी बन गए ना, तो बुद्धि तो सूक्ष्म बनती है ना, उसको बुद्धि तो भी कितना सूक्ष्म बनते है ना शरीर छोड़ने के बाद?
नहीं, सूक्ष्म शरीर में आसुरी तत्व भी सूक्ष्म रूप में समाये रहते, और जो दैवी स्वभाव संस्कार है वो भी समाया हुआ रहता है। कोई भूत प्रेत होते हैं प्रवेश करते हैं तो आसुरी स्वभाव संस्कार वाले भी तो होते हैं, तो क्या वो सूक्ष्म शरीर में वो आसुरियत नहीं भरी हुई है?
लेकिन ब्रह्मा की बात अलग है ना, वो धारणा मूर्ति है ना,
ब्रह्मा की बात अगर अलग हो, संपूर्ण धारणा मूर्ति हो, तो क्या उसने मरते दम तक बाप के साकार स्वरूप को जो प्रैक्टिकल में संसार का कल्याण करने का निमित्त बना हुआ है, जिसके लिए बात साबित होती है, कि साकार में निराकार को याद करेंगे तो सब पापों का अंत हो जाएगा। तो क्या स्वरूप को उन्होंने पहचाना? बेसिकली ज्ञान को लिया, लेकिन एडवांस ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं आया जो पूरा परिवर्तन हो सके। एडवांस नॉलेज तो अब ले रहे थे, इसीलिए तो हार्ट फेल हुआ। अगर एडवांस ज्ञान आया होता तो हार्ट फेल होने का सवाल ही नहीं। मजबूत हार्ट वाले को कोई याद करेगा तो उसका मजबूत संघ का रंग लगेगा या कमजोर संघ का रंग लगेगा?
मजबूत
हार्ट बनेगा।
बाबा, द्वापर युग से जो सिस्टम बनी, जो अभी चल रही है परिवार पद्धति, तो वो कैसे बनी, कितना समय लगा उसमें? क्योंकि सतयुग त्रेता में सिस्टम अलग थी।
क्या सिस्टम की तरफ इशारा है?
पारिवारिक व्यवस्था।
पारिवारिक व्यवस्था में विचारी बन गई
तो
सतयुग त्रेता में भी पारिवारिक व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ अभी विचारी थी। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी। पति पत्नी के बीच में व्यभिचार का नाम निशान भी नहीं था। और द्वापर युग से क्या हुआ? व्यभिचारी रावण ने प्रवेश कर लिया।
निम्न दृष्टि
दृष्टि वृत्ति कृति सब व्यभिचारी होने लगी। ये अंतर हो गया।
पारिवारिक व्यवस्था के लिए जो कायदे कानून बनाए गए द्वापर युग से,
कितने भी कायदे कानून बनाए, वो बनाने वाले मनुष्य है या भगवान है? मनुष्य माने नर जो कुछ भी करेगा उससे नरक ही बनेगा और बन गया। और भगवान आकर जो कुछ करते हैं उससे स्वर्ग स्थापन होता है, क्योंकि वो पहला फाउंडेशन ही डालते हैं। स्वर्ग स्थिति में स्थित हो जाओ, ये बात कोई नहीं सिखाता। मनुष्य तो सब देह अभिमानी होते हैं।
आत्मा का ज्ञान तो बाप ही,
जो आत्माओं का बाप है वही तो आत्मा का ज्ञान देगा।
बाबा, इस तीनों धर्मों के तो बाप आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं संगम में, देवता क्षत्रिय और ब्राह्मण। वो तो ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण जात वो सही है, लेकिन क्षत्रिय धर्म की ये कैसा लागू है?
तो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय।
फेल माना कैसा? उसने तो अंत में जो 4.5 लाख होते हैं वो तो फेल नहीं होती है?
4.5 लाख में जो प्रवेश करने वाले हैं उनको फेलियर कहेंगे,
लेकिन उसको भी 9 लाख में वो आई ना, वो तो देवता
के संपूर्ण बनेंगे ना।
बनेंगे
और उनकी पूजा भी होगी कि नहीं?
उनका पूजा में नहीं होता है।
अच्छा,
नहीं होता।
फिर कृष्ण की आत्मा की पूजा कैसे होती है?
तो पूजा तो संगम की बात है।
राधा की आत्मा की पूजा कैसे होती है?
नहीं होती है।
तो इसलिए उसकी पूजा नहीं होती
तो
प्रवेश है तभी तो पूजा होती है। प्रवेश करके वो आत्मा भी संपन्न बनी है तभी तो पूजा होती है। तो वो अकेली प्रवेश करने वाली है या 4.5 लाख और उसमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने वाले हैं?
वो तो प्रवेश करने वाले 4.5 लाख
प्रवेश करने वाले, वो भी दृष्टि लेते हैं परमात्मा बाप से सन्मुख। और जिनका अपना शरीर है जिनमें दूसरी आत्माओं का प्रवेश होता है वो भी दृष्टि लेते हैं डायरेक्ट।
क्षत्रिय बाप क्या है?
क्षत्रिय वो जिनकी कलाएं कम हो जाती,
माना 83 बस ले लो,
पूरे 84 जन्म नहीं लेते, खंडित आत्मा हो जाती।
मतलब वो बाप की पहचान की भी नहीं ना, बाप की पहचान नहीं होता है ना,
बाप की पहचान नहीं होती है और विपरीत बुद्धि बन जाते हैं।
तो उसके लिए ये क्या बाप ने उसके लिए कोई बात नहीं है ना? वो तो 83 कम जन्म लेने वाला को वो कोई बात नहीं है ना,
फेलियर नहीं हुए?
फेल हुआ
तो उन्हीं के लिए है।
लेकिन फेल होने वाले धर्म स्थापन करना बाप वो तो अच्छा रहता है क्या
है?
तो जो फेल होती है वो धर्म स्थापन करने की बात बाप को अच्छा लगता है क्या?
क्यों अच्छा लगेगी? बाबा एक बात कहे धारणा की और कोई दूसरी बात आकर के धारणा की सुनाने लगे जो क्रास करती हो तो बाबा को क्यों अच्छी लगेगी?
तो वो उसका पार्ट है तो बाप का पार्ट नहीं है
जी,
वो बाप का पार्ट नहीं, वो उसका
बाप आकर के पहले जन्म का लक्ष्य देते हैं या कम कला वाले जन्मों का लक्ष्य देते हैं?
पहले
जो 16 कला संपूर्ण जन्म है उसी का लक्ष्य देते हैं ना।
तो बाप तीन धर्मों की स्थापना करते हैं ऐसा बोला गया।
हाँ जी हाँ।
तो क्षत्रिय धर्म की स्थापना क्षत्रिय धर्म की स्थापना तो बाप नहीं करते।
अरे यज्ञ के आदि में ही क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो गई। धर्म की स्थापना के लिए निमित्त साकार बनेगा या निराकार है? हिंदू है
साकार।
तो
यज्ञ के आदि में ही हो गया फिर
वो प्रजापिता फेल हुआ,
वो क्षत्रिय हुआ ना। पहला फेलियर कौन?
राम।
जो पहला सो सबका बाप। पहला ब्राह्मण कौन?
पहला ब्राह्मण तो प्रजापिता है।
जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय। हाँ जी
गीता माता के द्वारा अगर गीता पाठशाला चल रहे तो उसको ऐसे ही चला देने दो, नहीं तो चेंज करना नहीं है।
अगर कोई दूसरे युगल है वो हिंदी जानने वाले हैं चेंज कर सकते हैं। अगर कोई युगल है ही नहीं और कोई विधवा माता या मैच्योर्ड माता गीता पाठशाला चला रही है, आने वालों को ठिकाना मिल रहा है तो वो ठिकाना क्यों तोड़ना तब तक जब तक कोई युगल न निकले? काम चलाओ, गीता पाठशाला चलने देना। और
ब्रह्म बाबा अठारह जनवरी 1969 में शरीर छोड़ा और रामबली सोल दूसरा जन्म लेकर 30 नवंबर 1969 में यज्ञ में आई। तो ब्रह्म बाबा का सोल प्रजापिता में कब प्रवेश किया बाबा?
ब्रह्मा बाबा की सोल
प्रजापिता में कब प्रवेश?
प्रजापिता में तब ही प्रवेश कर सकती है जब वो आत्मा शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। अगर शंकर के रूप में प्रत्यक्ष न हो तो प्रवेशता शंकर के रूप में कहीं भी नहीं जा सकती।
1976 से 1976 कल तक ब्रह्म बाबा का सोल कहाँ रखी है बाबा?
बच्चों में प्रवेश करती है।
किन बच्चों में?
कोई भी बच्चों में जो उनके आधार हो, जो उनके फॉलोअर हो।
अगर गुजरदार संघ में आए ना बाबा
और दादियों में भी आते थे। टिक्कन दादी में प्रवेश होकर के वाणी चलाई। हाँ जी
1976 तक और हम बच्चों में प्रवेश किया।
1976 तक नहीं, 1976 तक और ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके ब्रह्मा की सोल ने पाठ बजाया और बीज रूप स्टेज में तब बनते हैं जब वो प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, तब उनकी बीज रूप स्टेज बनती है। उससे पहले सूक्ष्म शरीर ही कार्य करता है।
ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ते वक्त तो उनको यज्ञ के आदि की जो पर्सनैलिटी थी, जो उनके भागीदार थे, उनकी याद में शरीर छोड़ा होगा ना बाबा? ब्रह्मा बाबा ने आदि के बच्चों की याद में,
अगर उसकी याद में शरीर छोड़ा तो वो संपन्न रूप हुआ, भगवान का रूप हुआ या साधारण रूप हुआ?
उनको
तो फेलियर रूप है या नारायण रूप है?
फेलियर
आदि का फेलियर रूप।
फेलियर रूप को याद करेंगे तो क्या होगा?
ये तो उनमें प्रवेश करना चाहिए था ना, शरीर छोड़ते ही राम बाप में प्रवेश हो जाते अंतमति सुगति।
शरीर छोड़ते ही वो ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही शरीर छोड़ा वैसे ही प्रजापिता वाली आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। ये इसलिए नहीं हो सकता कि प्रजापिता जिस व्यक्तित्व का नाम दिया गया है वो जब तक 100 साल का न हो तब तक उसका मृत्युलोक समाप्त नहीं हो सकता।
76 में
तो यज्ञ के आदि में 1936 में प्रजापिता में जब प्रवेश किया तो 60 साल और 76 में 100 साल उम्र हो जाती है, ब्रह्मा मृत्युलोक खलास हो जाता है। चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा हो उनका मृत्युलोक समाप्त हुआ तो कौन सा लोक शुरू हुआ?
अमर लोक।
अमर लोक शुरू हो गया, वो अमरनाथ की पार्ट की शुरुआत हो गई। नारायण का जैसे जन्म हो गया प्रत्यक्षता रूपी, इसलिए 69 से प्रवेशता नहीं गाई जा सकती न हो सकती। 69 में तो वो गर्भपिंड कहेंगे, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने को प्रत्यक्ष होना कहा जाता है। प्रत्यक्ष होने से पहले बच्चा गर्भ में रहता है गुप्त, तो ये 7 साल जैसे कि गर्भपिंड में गुप्त जो जड़ मूर्ति है उसकी तैयारी होती रही।
मैं ना
जड़ मूर्ति तैयार हुई लेकिन उसमें आत्मा
नहीं
प्रवेश नहीं हुई, और 76 में
प्रवेश
आत्मा का प्रवेश हो गया।
मनन चिंतन चला है बाप उस समय
आदि शिव ने प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन का सागर मंथन हुआ
6 साल।
और
बाबा 108 बीज रूपी आत्मा है, सभी धर्म में जाते जन्म लेते कर्म स्थापन करने के लिए।
धर्म स्थापन करने के लिए बीज रूप आत्मा नहीं जाते हैं, राजाई की स्थापना करने के लिए बीज रूप आत्मा जाते हैं। बीज माना बाप, बाप का काम होता है आदि में जन्म देना और बच्चों को वर्षा देना। ये वर्षा है राजाई का, सत्युग त्रेता की राजाई शिव ज्योति बिंदु बाप परम पिता परमात्मा देते हैं, और द्वापर कलयुग की राजाई कौन देता है? जो बाप होगा वो देगा, जो बीज होगा वो देगा, और धर्मों के भी बीज है वो बाप के सहयोगी बनते हैं। और
बाबा की 108 में ये 9 ग्रुप होती है ना, ये 9 ग्रुप में 12 में मुखिया होते है हर धर्म के।
12 के 9 ग्रुप,
9 ग्रुप में मुखिया होते है ना।
हाँ, वो 12 का कोई न कोई मुखिया होता है 12 का।
उसमें वो नवग्रह की रूप में वो पूजन है ना उनको, नवग्रह की रूप में जो मुखिया को।
हमारा घर तब बनता है जब अम्मा बाप दोनों हो, क्या
दोनों प्रवृत्ति होती है।
हाँ, तो जो दूसरे दूसरे धर्मों के ग्रुप हैं उनके जो मुखिया हैं वो ज्यादा बुद्धिमान हैं, या जो अष्टदेव हैं या पहला सूर्यवंशी ग्रुप है वो ज्यादा बुद्धिमान है।
अष्टदेव जो वो बुद्धिमान है,
तो ज्यादा बुद्धिमान है माना बीज बाप है।
नवग्रह
तो जो बुद्धि में ज्यादा तीखे होते हैं वो फिर निर्बुद्धियों में प्रवेश करते हैं, क्या? और प्रवेश करके
अष्टतत्वम में अष्टदेव
को चलाते हैं, इसलिए रुद्रमाला के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं, कई कई मुख दिखाए जाते हैं।
सुबह नवग्रह जो है ना बाबा, नवग्रह कौन है? वो 12 ग्रुप में जो मुखिया वो है, लेकिन
उनमें एक बाप है मन बुद्धि रूपी बीज आत्मा, और एक शरीर है,
कैसे
दैहिक रूप, तो दूसरे धर्म वालों का दैहिक रूप ज्यादा होगा या जो अष्टदेव है उनका रूप ज्यादा दैहिक होगा?
दैहिक माना बाप क्या?
दैहिक माना पांच तत्वों से ज्यादा प्रभावित रहने वाला,
प्रभावित दूसरे धर्म वाले।
हाँ, तो वो हो गए धरणी, पंच तत्व का संघात, और वो उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा है अष्टदेव। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो संगम युग में ज्यादा पावरफुल बन जाती है, जिनमें प्रवेश होता है वो विकारी वृत्ति जन्म जन्मांतर की होने के कारण कमजोर बन जाते हैं, और बाप को न पहचान पाने के कारण उनके पाप पूरे भस्म नहीं होते, इसलिए वो अष्टदेव उनको कंट्रोल करते हैं। और
जैसे नवग्रह में बाप वो गुरु को बृहस्पति है ना, बृहस्पति प्रजापिता को लागू होती है, और रवि जो है जो साकार में निराकार प्रवेश होते हैं ना उसको रवि कहा जाता है, और ग्रह जो है ना वो कौन से धर्म का है? जैसे कहो शनि, भक्ति मार्ग में शनि को बहुत महत्व देते हैं, और बुध है जैसा अंगारक है, ऐसे ऐसे ग्रह है ना, वो कौन से धर्म वाला होते हैं?
अलग अलग धर्मों के अलग अलग है ग्रह, नौ ग्रह है, तो नौ ही मुख्य धर्म है जो राजा का वर्षा लेते हैं। नंबर वन
हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बाप, ये है
स्पेसिफाई करने के लिए कोई ने मना थोड़े ही किया, स्पेसिफाई करो और वेरीफाई करो,
वो बच्चों का काम है,
कुछ तक तो निकालो, एक ने कोई ठेका थोड़े ही लिया हुआ है, सागर मंथन ने एक ने किया या असुर और देवताओं ने मिलकर के किया?
दोनों
ने मिलकर के किया, तो कोई नई बात निकालो और निकाल के उसको वेरीफाई करो।
बाबा
हाँ जी,
निर्सवान बीज रूप आत्मा है, सभी धर्म में भी जाते हैं?
निर्सवान बीज रूप आत्मा है, कोई धर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है।
नहीं, जन्म लेते हैं,
जन्म लेकर के कन्वर्ट, उसको कन्वर्शन नहीं कहा जाता।
नहीं, 108 भी आधार में जन्म लेते हैं?
108 जो बीज रूप आत्मा है वो कभी कन्वर्ट नहीं होती,
कन्वर्ट नहीं,
जन्म ले सकती है
हर धर्म में।
हर धर्म में क्यों, जिसका जिस धर्म से कनेक्शन होगा,
धर्म
इस्लाम धर्म के जो बीज होंगे उनका कौन से धर्म से कनेक्शन होगा? इस्लाम धर्म से कनेक्शन होगा। हाँ जी, और
बाप समान सदैव आत्मा को माटी स्टेज में रखने के लिए क्या करना चाहिए?
बाप समान सदैव
जो मुरली में बोला है वो सब कुछ करना है।
बाबा
हाँ जी,
इस्लाम धर्म का जो भी 12 ग्रुप है वो उस धर्म के धर्म स्थापन होने के बाद जो बाहर आते हैं उसमें रहते हैं?
वो धर्म स्थापन होने के बाद
उस ग्रुप फिर कानों में आते हैं नहीं आते?
कहाँ से बाहर आ जाते हैं?
उस धर्म से, तो बीज 12 लोग जाते हैं उसमें,
वो धर्म के स्थापन होने के समय थोड़े जाते हैं,
बाद में जाते हैं ना,
जब उनकी लाखों की तादाद हो जाती है तो उस लाखों की तादाद में जन्म लेकर के उनके बीच में फिर कोई ऐसा पार्ट बजाते हैं जो राजा ही स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, जैसे बाबर, पहला बादशाह हुआ मुगलों का, बचपन में साधारण सिपाही था और बड़े होते होते भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया, ये एक ही जन्म में बैगर टू प्रिंस बनने का संस्कार कहाँ से धर्म दान किया है? जरूर संगम युग में कोई आत्मा है जो इसी जन्म में रोडपति का पार्ट बजाती है और इसी जन्म में बैगर टू प्रिंस बन जाती है। और जो हुआ सो ड्रामा, मैं गीता का भगवान नहीं बिंदु तो दूसरे भी रह सकेंगे। जब जो निमित्त आत्मा है वो ही नहीं रख सकी तो दूसरी आत्मा परमानेंट बिंदु कैसे रख पाएगी? तो कहते हैं कि हमने बिंदु लगा दिया है, पुरुष ताप लगा दिया,
सब प्रश्न पूछा है जगत माता एक में कब आएगी?
जगत माता यज्ञ में तब आएगी प्रैक्टिकल में, साकार में देखने में, जब साकार के नक्शे कदम पर चलेगी। जब तक सीता श्रीमत के लीका के बाहर है तब तक रावण की जेल में है, और श्रीमत की लीका की यानी पटरी पर, श्रीमत की पटरी पर पक्का चल पड़ेगी तो रावण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और सीता रावण के अधीन नहीं हुई,
उसकी वाटिका में थी,
वाटिका में थी,
खाना वाना खाती थी, कपड़े वपड़े पहनती थी,
फल खाती थी,
उनके उनके जो परिचारक थे उन परिचारकों से कुछ लेना देना करती थी, है संग कारक लेती थी। अरे
रावण को तो दूर ही रखा था।
ये कहो कि जो सीता रावण की जेल में दिखाई जाती है वो असली सीता अव्वल नंबर नहीं थी, वो मूर्ति बनाई हुई थी, डुप्लीकेट बनाई हुई थी। असली सीता तुम पावत में करो निवासा, तुम योग अग्नि में निवास करो, तब तक मैं असुरों का वर्ष करता हूँ। तो योगाग्नि में रख दिया था सदा का, वो अग्नि का संग करती थी।
लड़कू की माता जी पूछ रहे पूरी जगन्नाथ की सेवा कर लगे थे, जो मूर्तियां दिखाते उसमें बीच में सुभद्रा को दिखाते हैं और लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ का कंधे पर दिखाते हैं, तो क्या है इस बारे में?
वो कंधे पर उठा के रखते हैं
तो बीच में सुभद्रा को दिखाते हैं
और बाजू में
बलराम को।
हाँ तो बलराम कौन हुआ? राम ही तो बलराम हुआ और संग विधि करने की जगन्नाथ हुआ और सुभद्रा भद्र माना, सुभद्र माना क्या?
सुरक्षित है,
मंगल
कल्याणकारी मंगलकारी, तो भद्रा माना सुंदर कल्याणकारी। आ कल्याण का नाम निशान नहीं क्या? स्थापना में भी कल्याणकारी और विनाश में भी कल्याणकारी। भाई बहन हुए ना, मंत्रा कौन थी? कृष्ण जी बहन थी। रुद्रमाला के जो मुख्य मणके है वो भाई बहन है या कुछ और है संबंध उनका?
भाई
भाई है, चोला नहीं है।
चोला
है ना, तो जब चोला है तो भाई बहन है, तो भाई बहन है माना सुभद्रा और जगन्नाथ है। और
हमारा रथ पूरा नहीं हुआ, हमारा रथ पूरा नहीं हुआ
क्या?
जो भी बीज रूप आत्मा है, नव ग्रुप है, बारह बारह का नव ग्रुप है, वो नव ग्रुप ये धर्म इधर का जो भी इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म स्थापन करने के लिए करने में सभी जाते हैं।
सभी क्यों जाएंगे? सभी जाएंगे तो सब धर्म वाले हो जाएंगे। जैसे प्रजापिता का ग्रुप, वो प्रजापिता सब धर्मों में जाता है, सब धर्मों को राजाई का वर्षा देने के लिए, तो सारे ही प्रजापिता के ग्रुप हो जाएंगे क्या? हैं? नहीं हो सकते ना। तो जो जिस धर्म का बीज है टाइम आने पर वो प्रजापिता के ग्रुप के साथ तब ही जाकर के उस धर्म में जन्म लेगा।
माना दो ग्रुप जाते?
हाँ जी,
दो ग्रुप दूसरा ग्रुप भी वापस आते हैं, रहते
सारे ही वापस आए। जो एक ग्रुप है वो तो जाता है और तुरंत वापस आता है, दूसरा जो है वो विधर्मी है जन्म जन्मांतर का संग का रंग देहधारियों का लेने वाला, वो ज्यादा संग का रंग लेगा या कम लेगा?
ज्यादा
लेगा, इसलिए उसको संग का रंग ज्यादा लग जाता है।
शंकर जी की गले में सब दिखाता है ना भक्तों में, क्यों दिखाएं?
शंकर जी के गले में ही सांप दिखाया जाता है या कमर और बाजुओं और सर के ऊपर भी दिखाया जाता है? है? सिर्फ गले में ही सांप दिखाया जाता है या सर के ऊपर भी दिखाते हैं और बाजुओं में भी दिखाते हैं और कमर में भी दिखाते हैं? दिखाते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस स्थान पर दिखाया जाता है वो उस स्थान का अधिष्ठाता हो गया। कमर में जो सांप है वो काम विकार का सूचक है। महाकामी जैसी आत्माएं वो आकर के चिपटती हैं और भुजा लेफ्टिस्ट भुजा क्रोध की निशानी है। तो कोई है सर्प जो क्रोध विकार का सूचक है और हाथ फैलाते हैं तो लोभ का सूचक है, लोभ विकार रूपी सर्प और मोह की फांसी डालने वाला गले में, मोह का सूचक है और सर के ऊपर अहंकार का सूचक है। पांच सर्प दिखाए जाते हैं, पांच का मतलब पांच ही नहीं है, हैं तो बहुत लेकिन उनकी पांच प्रकार की कैटेगरी है। शंकर का पाठ है जो सर्प आके चिपकते हैं, लिपटते हैं लेकिन उनसे डरता नहीं है। और
टाइम हो गया।